समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त आपकी अपनी प्रिय न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर हमारी रहती बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीष शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा। नमस्कार अनुजा।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुनीष। मुनीष, सो हाउ वाज योर होली यस्टरडे?
वेल, स्प्लेंडेड, फुल ऑफ कलर्स एंड यू कैन से फीस्टी। यस, इट वाज।
सर्टेनली इट हैड टू बी। इट इज कंप्लीटली नेचुरल टू स्टिल बी इन द होली मोड इवन आफ्टर द फेस्टिवल इज ऑफिशियली ओवर। The vibrant colors, the hangover of the celebrations, and the joyous spirit of togetherness are designed to linger, often leaving us in a state of, as the saying goes, "Bura na mano holi hai."
Bilkul.
Playing with colors, dancing, and laughing with friends and family act as mental health boosters. The excitement, even with the physical fatigue, leaves a lingering feeling of happiness. Holi, or for that matter, any festival, is a time for forgiveness and repairing relationships. This spirit of reconciliation and joy often extends beyond the day, creating a lingering positive atmosphere. But whatever may be, here we are for you with a fresh day and a fresh episode of our daily afternoon magazine, Parikrama. So let's begin with the news headlines first, Manish.
Ji haan, Anuja. भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए हैं कई समझौते।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया एंड फिनलैंड आर यूनानिमस दैट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अलोन कैन नॉट रिजॉल्व एनी इश्यू।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।
पीसफुल पोलिंग अंडरवे इन नेपाल आफ्टर कंट्री वाइड जेंजी प्रोटेस्ट।
ईरान ने अमरीका और इसराइल के संयुक्त सैन्य हमलों के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण शुरू किया। इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की चेतावनी दी।
एंड इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, इंडिया एंड इंग्लैंड विल बी अप अगेंस्ट ईच अदर इन सेमीफाइनल इन मुंबई दिस इवनिंग। And as always, Manish, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness. Our special program dedicated to an important international observance celebrated across the world today, the 5th of March, the International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness. This day is not only about global policies and international agreements, it is about something much closer to all of us, the dream of a peaceful world where people live with kindness, understanding and mutual respect. And today we will explore why disarmament matters, how weapons affect human lives, and how each one of us can contribute to a more peaceful future.
बिल्कुल अनुजा, और इसके लिए हमें ये जानना होगा कि कैसे 20वीं सदी के विनाशकारी संघर्षों के बाद, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पश्चात से ही निरस्त्रीकरण यानी हथियारों को कम करना और उन्हें सीमित करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य रहा। विश्व भर के नेताओं ने स्वीकार किया कि यदि राष्ट्र बगैर किसी सीमा के शक्तिशाली हथियारों का निर्माण और संचय करते रहे तो स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हथियारों पर नियंत्रण और राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास बहुत जरूरी थे, और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व के लोगों को इस विश्व के विशेष दिवस को मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वो निरस्त्रीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैला सकें और सीख सकें।
And one of the biggest concerns for the international community is the existence of weapons of mass destruction, especially nuclear weapons. These weapons have the capacity to destroy the entire city within seconds and cause long-lasting environmental and health effects. Their destructive power is so immense that even the possibility of their use creates fear and tension across the world. However, global security challenges do not end with nuclear weapons. The excessive accumulation of conventional weapons and the illegal trade of small arms and light weapons also contribute to instability and conflict in many regions.
और दोस्तों यहाँ जानने की खास बात यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इस वजह से समुदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है जिससे हिंसा और तेजी से फैलती है। जब मतभेदों को सुलझाने के लिए हथियार एक आम जरिया बन जाए तो शांति भंग हो जाती है। आज एक और गंभीर समस्या आबादी वाले इलाकों में विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल है। जब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शहरों या कस्बों में होता है तो अक्सर निर्दोष नागरिक ही सबसे ज्यादा उनसे पीड़ित होते हैं। घर नष्ट हो जाते हैं, स्कूल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और अस्पतालों को सुचारू रूप से काम करने में कठिनाई हो सकती है। परिवार अपने प्रियजनों को खो सकते हैं और समुदायों को अपना जीवन पुनर्निर्माण करने के प्रयास में बरसों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
Not only this, in addition to these challenges, new and emerging technologies are changing the nature of warfare. One example is the development of autonomous weapon systems, machines capable of selecting and attacking targets with minimal human control. These technologies raise many important questions. Should machines be allowed to make life and death decisions? How can the world ensure that technological advancements do not threaten human safety? These questions are being discussed widely by all the governments, scientists and organizations around the world.
हालांकि वैश्विक मुद्दे दोस्तों हमारे रोजमर्रा के जीवन से दूर लग सकते हैं लेकिन इनसे हम सबको एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दरअसल निरस्त्रीकरण का मकसद सिर्फ हथियारों को हटाना नहीं है, ये शांतिपूर्ण सोच और सम्मानजनक संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना है। संघर्ष अक्सर तब शुरू होता है जब लोग एक दूसरे की बात को सुनना बंद कर देते हैं और जब हमारे मतभेद शत्रुता में बदल जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सहानुभूति और समझ को चुनते हैं तो हिंसा के बिना भी संघर्षों का समाधान किया जा सकता है।
Yes, why not? Let us consider a simple example from our daily life. Two friends may disagree about something. If they react with anger, their disagreement may grow into a conflict. But if they listen to each other patiently and try to understand each other's perspectives, the problem can often be solved peacefully. This simple principle applies not only to individuals, but also to communities and nations at large. The National Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness reminds us that peace is built step by step through dialogue, cooperation and trust.
दरअसल सरकारें संधियों और समझौतों पर बातचीत कर सकती हैं लेकिन स्थायी शांति आम लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले मूल्यों पर भी निर्भर करती है। युवा पीढ़ी खासतौर से भविष्य को जो आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाती है। वैश्विक चुनौतियों के बारे में सीखकर और सहिष्णुता, दयालुता और आपसी सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर वो एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया को बनाने में योगदान दे सकते हैं। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, नागरिक समाज समूहों और मीडिया को इस दिन चर्चाओं, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये गतिविधियां लोगों को दरअसल ये समझने में मदद करती हैं दोस्तों कि हथियारों को कम करना किस तरह संघर्षों को रोकने, नागरिकों की रक्षा करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में योगदान देता है।
And in all these things, education do play a powerful role in this. When people understand the consequences of violence and war, they also begin to appreciate the value of cooperation and compassion. Through education, we learn that every human life is precious and that conflicts should be resolved through peaceful means. Kindness may seem like a simple quality, but it has the power to transform societies. A kind gesture can build trust. Respectful dialogue can prevent misunderstandings. Empathy can bridge differences between cultures, communities, and nations. When these values guide our actions, the world becomes safer and more harmonious.
दोस्तों एक पल के लिए आप सोचिए कि हम अपने दैनिक जीवन में दया और सम्मान का अभ्यास कितने तरीकों से कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना, दूसरों की बातें धैर्य से सुनना, विविधता का सम्मान करना और न्याय के लिए खड़े होना, ये सभी शांति में छोटे लेकिन सार्थक योगदान तो हैं ही। हर सकारात्मक कार्य एक दरअसल सकारात्मक प्रभाव को पैदा करता है, जो दूसरों को भी करुणा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। शांति सिर्फ युद्ध की गैर मौजूदगी नहीं है, ये न्याय, समझ और सहयोग की उपस्थिति है। ये तब आती है जब इंसान संघर्ष के बजाय संवाद और घृणा के बजाय करुणा को चुनते हैं। निरस्त्रीकरण की दिशा में वैश्विक प्रयास मानवता की जीवन की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने की इच्छा को दर्शाते हैं।
And as we observe the International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness today, let us remember that the journey towards peace requires participation from all of us, governments, organizations, educators, journalists and individuals each have to play a role in promoting awareness and encouraging peaceful solutions. Let's today be a reminder that every step towards understanding and respect brings us closer to a world where weapons are no longer the answer to disagreements. Instead, cooperation, dialogue and compassion become the guiding principles of human progress.
दोस्तों, दरअसल शांति की शुरुआत छोटे-छोटे फैसलों से होती है, जैसे क्रोध की जगह धैर्य को चुनना, शत्रुता की जगह दयालुता को चुनना और आलोचना की जगह समझ को चुनना। जब लाखों लोग हर दिन ये फैसले लेते हैं तो शांतिपूर्ण दुनिया का सपना और भी मजबूत और साकार होने योग्य हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए आइए आज हम एक सरल प्रतिज्ञा करें। हम दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे, उन्हें सहानुभूति से सुनेंगे और हम जहां भी जाएंगे दयालुता का परिचय देंगे।
Yes, Munish, all these pledges convey that a peaceful world is built not only through international agreements, but through the hearts and actions of people everywhere. Let us continue working together to build a future defined by peace, understanding and humanity. Until next time, stay informed, stay compassionate and keep spreading the message of peace.
दोस्तों, अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक तो है ही। दोस्तों, वसंत ऋतु के आगमन का ये त्योहार रंगोल्लास से हम सबका जीवन भर देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र के जालना और बीड जिले में इस त्योहार पर कुछ अलग ही परंपराओं का चलन है। जी हाँ, होली मनाने की कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ परंपराएं एकदम संस्कारी होती हैं, तो कुछ हंसी ठिठोली की सारी मर्यादाओं को लांघ जाती हैं। मराठवाड़ा संभाग के जालना और बीड, इन दो पड़ोसी जिलों में भी ऐसी ही दो परंपराएं पिछले लगभग 100 सालों से मनाई जा रही हैं। दरअसल जालना शहर में दुल्हंडी यानी जो रंग वाली होली है, उसके दिन एक जुलूस निकलता है और सारे शहर के लोग बड़े ही आदर के साथ इस जुलूस का अभिवादन करते हैं, क्योंकि यहाँ के राजा हाथी पर सवार होकर इस जुलूस में शामिल होते हैं। हालांकि हाथी और राजा ये दोनों ही नकली होते हैं और इस परंपरा के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बाबा साहब मस्के।
होली मनाने की कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ परंपराएं एकदम संस्कारी होती है, तो कुछ परंपराएं हंसी ठिठोली की सारी मर्यादा लांघ देती है। मराठवाड़ा संभाग के जालना और बीड, इन दो पड़ोसी जिलों में भी ऐसी ही दो परंपराएं पिछले लगभग 100 सालों से मनाई जा रही है। जालना शहर में धुलंडी के दिन एक जुलूस निकलता है। सारे शहरी बड़े ही आदर के साथ इस जुलूस का अभिवादन करते हैं, क्योंकि यहाँ के राजा हाथी पर सवार होकर इस जुलूस में शामिल होते हैं। हालांकि हाथी और राजा दोनों ही नकली होते हैं। इस परंपरा के बारे में और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता बाबा साहब मस्के से।
सजा हुआ हाथी, उस पर बैठा एक राजा और सरदार, पारंपरिक पोशाक, ढोल और झांझ की आवाज और सूखे रंगों की बौछार, यह अनोखी शोभा यात्रा जालना शहर की सांस्कृतिक विरासत है। इस जुलूस में सभी धर्मों के नागरिक भाग लेते हैं और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता है। हाथी पर सवार राजा लोगों पर रेवड़ियां उछालता है। यह जुलूस जिस रास्ते से गुजरता आए वहाँ के लोग रंग खेलना बंद करते हैं।
बीड़ जिले के वीड़ा नामक गांव में एक अजीब सी परंपरा मनाई जाती है। यहाँ होली के दिन गांव में यदि किसी का जमाई आया हुआ है तो उसे गधे की सवारी कराई जाती है। इस बारे में और अधिक जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे संवाददाता रवि उबाड़े।
पिछले 100 साल से यह अनोखी होली मनाई जाती है। होलिका दहन से ही गांव में जवाई की खोजबीन शुरू होती है। इस अजीब परंपरा की जानकारी जिस जवाई को होती है वह इस दिन ससुराल में आते ही नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जवाई पकड़ में आता है और फिर उसे रंगों से नहलाकर गधे की सवारी करवाई जाती है। पूरे गांव में घूमने के बाद जवाई को नहलाकर उनका आदर सत्कार करते हुए कपड़ों का उपहार दिया जाता है। इस बार भी यह अनूठी परंपरा पूरे जोश के साथ मनाई गई।
परंपराएं भले ही अजीब हो लेकिन उनके पालन से ही हमारी सांस्कृतिक विरासत हर साल मजबूत होती जा रही है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
एंड नाउ ओवर टू संबलपुर। Gunikhai, a traditional festival of gratitude, is being celebrated with devotion and joy across Western Odisha on the occasion of Phagun Purnima. The festival reflects the deep bond between nature and local communities, especially the farmers and tribal groups. We have more on this from our Sambalpur correspondent.
Gunikhai is an age-old tradition where people thank nature for its gift and pray for prosperity. In Western Odisha, it is customary to offer the first harvest to God before consuming it. The festival takes place during Holi and Dolo celebration, adding spiritual meaning to the festive season. With the arrival of the month of Phagun, trees shed old leaves and bear new fruits such as mango, mahua and char. Villagers collect these forest fruits and wrap them in leaves. They mix them with gram, honey and sweets to prepare a special offering. This is then presented to the village deity as Bhogo. Phagun Abir is also offered to God as part of the ritual. Every household follows this practice. Families first offer fruits and flowers to the deity before eating them. After completing the ritual, people join holy celebration and play Phagu with colors and joy. The festival is widely observed in tribal districts like Kalahandi and Nuapada. In these areas, the celebration continues into the night with traditional dance and songs. The event beautifully combines ancient custom with happiness and community spirit. For farmers and tribal communities, Gunikhai is more than a festival. It is a celebration of harmony with nature and a way to express gratitude for the food and livelihood it provides. For Parikrama, this is Alok Chandra Barik, Akashvani, Sambalpur.
दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत सरहदी जिले कच्छ में आधुनिक शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए 18 नए पीएम श्री स्कूलों को मंजूरी दी गई है और इस जिले में पहले से ही 16 स्कूल सक्रिय हैं और अब इन नए स्कूलों के जुड़ने से कच्छ के छात्रों को तकनीक पर आधारित और व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। आइए हम जानते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू क्या कहते हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कच्छ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से जिले में पहले से ही 16 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में संचालित किया जा रहा है और अब राज्य सरकार द्वारा जिले में और 18 नई पीएम श्री स्कूलों को मंजूरी दे दी गई है। इन स्कूलों का मुख्य लक्ष्य छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी आधारित आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में कार्यरत 16 स्कूलों को केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सुविधा युक्त बनाया गया है। यहाँ शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब 18 नए स्कूलों को मंजूरी मिलने से जिले में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा उठेगा। जिला शिक्षा अधिकारी संजय परमार के अनुसार ये नई स्कूलें आगामी शैक्षणिक सत्र से जिले में कार्यरत हो जाएगी और इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि अन्य स्कूल भी से प्रेरणा ले सके। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी भी की जा रही है। हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी संजय परमार ने अलग अलग प्राथमिक शाला का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल की ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और खेलकूद जैसी सह अभ्यास गतिविधियों का बारीकी से मूल्यांकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। जिला प्रशासन, तालुका प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और बीआरसी सीआरसी की टीम लगातार इन स्कूलों की समीक्षा कर रही है ताकि कच्छ के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक शिक्षा मिल सके। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
और आइए दोस्तों, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। दरअसल आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होना है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा शाम 7 बजे से। पहले सेमीफाइनल में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था 9 विकेट से।
सो यस, विशिंग टीम इंडिया द वेरी बेस्ट फॉर टुडे। And coming to the business news now, benchmark equity indices staged a strong rebound today, rising over 1%. The Sensex climbed 900 points to close at 80,016, while the Nifty rose 285 points to settle at 24,766, snapping their three-day losing streak. And in the global crude oil market, Brent crude was trading around 1.7% up at $82.75 per barrel, and WTI crude was trading 2.2% up at $76.33 per barrel in intraday trade. For more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
और आइए दोस्तों, अब हम याद करें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें कुछ उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
On the 5th of March 1931, the Gandhi-Irwin Pact was signed. The political agreement marked the end of Satyagraha against the British government that Gandhiji had initiated with the Salt March.
Gandhiji had initiated the Salt March between March and April 1930.
The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps.
Bapu's arrest and imprisonment at the end of the march sparked off one of his more effective civil disobedience movements in British India. By the end of 1930, thousands of Indians were in jail and the movement had generated worldwide publicity.
Lord Irwin was looking for a way to end it. To this end, Gandhiji was released from custody in January 1931. Gandhiji was authorized by the then President of the Congress, Sardar Vallabhbhai Patel, to negotiate with Lord Irwin. As per the pact, Gandhiji, on behalf of the Indian National Congress, agreed to discontinue the civil disobedience movement. The Congress agreed to join the second roundtable conference to chalk out constitutional reforms. It was also agreed that the British would withdraw all orders imposing curbs on the activities of the Indian National Congress.
They also agreed to withdraw trials relating to several offences except those involving violence and release of prisoners arrested for participating in the civil disobedience movement. It was also agreed that the British would remove the tax on salt, which allowed Indians to produce, trade and sell salt legally and for their own use.
We also remember freedom fighter and statesman Bijayananda Patnaik, popularly known as Biju Patnaik, who was born on the 5th of March 1916. Considered the architect of modern Odisha, Biju is lovingly referred to as the hero of Kalinga and the Karavela of Kalinga.
Biju Patnaik was educated at Ravenshaw College in Orisha, but due to his interest in aviation, dropped out and trained as a pilot. Patnaik flew with the private airlines, but at the start of the Second World War, he joined the Royal Indian Air Force. While in service, he developed an interest in nationalist politics and used Air Force transports to deliver what was seen as subversive literature to Indian troops.
He was jailed by the British for dropping political leaflets to Indian soldiers fighting under British command in Burma and flying clandestine missions that carried Congress Party leaders from hideouts across India to secret meetings that charted the independence struggle.
Biju joined the Quit India movement and was sent to prison for 2 years in 1943. Biju was also instrumental in assisting Indonesia with its independence struggle against the Dutch in 1947.
The Indonesian Prime Minister, Sultan Sjahrir, was placed under surveillance by the colonial Dutch. Jawaharlal Nehru entrusted the task of rescuing Sultan Sjahrir to Biju Patnaik. Biju braved all obstacles and brought Sultan Sjahrir and staff aboard from Java Islands on the 22nd of July 1947 to Singapore and finally to Delhi. An indebted Indonesia conferred the highest civilian award, Bhumiputra, to Biju.
In 1946, Patnaik was elected uncontested to the Odisha Legislative Assembly from North Cuttack constituency. He served twice as the Chief Minister of the State of Odisha. We salute the great freedom fighter.
We also pay tribute to Gangubai Hangal, a classical singer of the Khayal genre of Hindustani classical music from Karnataka, who was known for her deep and powerful voice. The legendary vocalist of the Kirana Gharana defied social barriers to become a leading performer, receiving prestigious awards including the Padma Bhushan Sangeet Natak Academy Award, Padma Vibhushan, and also the Sangeet Natak Academy Fellowship for Music and Performing Arts. She began her career in 1932, gaining fame for her unique vocal strength, which was often compared to male vocalists of her time. She was a trailblazer for women in classical music.
We would like to add that Gangubai Hangal was a regular voice on All India Radio Networks for many, many years. And now we will talk about Punya Tithi, then today Jalal Agha Sahib ki bhi Punya Tithi, who is a very well-known Hindi film director and director. He was a very lokapriya hasya abhineta. Agha was his supputra. And he had a Punya film और टेलीविजन संस्थान से अभिनय का अध्ययन किया और कई यादगार फिल्मों में उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई और उनको हम आज याद करते हैं उन तमाम भूमिकाओं के लिए और खास तौर पर अगर आपको याद हो आपने देखी है बहुत ही मशहूर फिल्म शोले तो उसमें जो गाना फिल्माया गया था हेलेन पर उसमें आप भी बराबर स्क्रीन पर नजर आते हैं तो आइए सुनते हैं वही एक यादगार गीत फिल्म शोले से और दोस्तों जलाल आगा जिन्होंने शोले के अलावा भी ऐसी कई फिल्में की जिनके लिए हम उन्हें याद करते हैं जैसे जूली बदनाम टैक्सी टैक्सी शंकर हुसैन और साहब बहादुर
In fact, Munish, beyond Bollywood, Agha also made notable appearances in English language films such as Bombay Talkie, Gandhi, Kim and The Deceivers. And of course, we move on to wishing a very happy birthday to Saurabh Shukla. Saurabh Shukla's most famous roles often include the iconic gritty Kallu Mama in Satya, the humorous Batuk Maharaj in Lagira Ho Munna Bhai, and the poignant Inspector Datta in Barfi, and the acclaimed Judge Tripathi in Jolly LLB. If you remember all these roles, he made his a popular, in fact, he
बिल्कुल दरअसल उन्हें जॉली एलएलबी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और स्क्रीन पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था तो आइए सुनते हैं उन्हीं की इस यादगार जो एक फिल्म थी सत्या उससे ये गीत
अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू मामा कल्लू मामा
गोली मार में और दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और अनुजा को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो जरूर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमें मोबाइल ऐप है जो हमारा न्यूज ऑन एआईआर, उस पर भी सुन सकते हैं। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।